ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 31 श्लोक क्रमांक 26। सायितो सोचे पर्यंके जंतो स्वेद जदोषते नेसाह कंडो यने अंगानाम आशनोत्थन चेष्टने। अनुवाद एवं तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पसीने तथा कीड़ों से भरे हुए मैले कुचले बिस्तर पर लेटाया हुआ शिशु खुजलाहट से मुक्ति पाने के लिए अपना शरीर खुजला भी नहीं पाता। बैठने खड़े होने या चलने की बात तो दूर रही। तात्पर्य ध्यान देने की बात है कि शिशु रोता हुआ तथा पीड़ा का अनुभव करता हुआ उत्पन्न होता है। जन्म के बाद भी वही कष्ट चालू रहता है और वह रोता जाता है रोता जाता है। क्योंकि मल तथा मूत्र के कारण मैले कुचले बिस्तर के कीड़े उसे परेशान करते रहते हैं, इसलिए वह बेचारा रोता रहता है। वह इसका कोई उपचार नहीं कर सकता। कार्तिक मास अपने अंतिम चरण में है। आज शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आने वाले आए हुए सभी अतिथियों का इस्कन वृंदावन की ओर से हम सबका स्वागत करते हैं। प्रातःकालीन भागवत सत्र में आप सबका पुनः स्वागत है। कार्तिक का मास साधन का मास है और साधना करते करते भक्तों को प्रसन्नता होती है, बहुत अच्छी बात है। देश विदेशों से सभी जनता यहाँ आई हैं और खास करके भीष्म पंचक के लिए भी कुछ लोग विशेष रूप से आए हैं, सबका स्वागत है। भागवत का यह तीसरा स्कंध और ये जो प्रसंग चल रहा है, ये दुख की बात चल रही है। सुख इस प्रसंग में आपको सुखानुभव नहीं होगा। कैसे दुख है और पीड़ा जन्म से ही प्रारंभ होती है, इसके बारे में साक्षात भगवान ये सूचना दे रहे हैं कपिल के रूप में, कपिल अवतार में। तो ये पीड़ा का वर्णन आप लोग सुनते आ रहे हैं, ये तीन अध्यायों में किया गया है, 30, 31 तथा 32। अब जो अध्याय चल रहा है ये 31वां अध्याय चल रहा है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि जीव किस तरह से दुख भोगता है, बाल्यावस्था में, यौवनावस्था में, वार्धक्य अवस्था में। वार्धक्य अवस्था के दुख को वर्णन करते हुए व्यासदेव जी कहते हैं कि नासा इव गोजरम, बूढ़ा बैल को जैसे कोई आदर नहीं करता तो वृद्ध व्यक्ति का आदर घरों में नहीं होता है। ये अपमान का, ये दुर्दशा का स्मरण कराया जा रहा है। क्यों कराया जा रहा है? माता ने सबसे पहले कई बातें पूछी थी और उनमें से एक महत्वपूर्ण बात है, 29वें अध्याय में आप लोग देखेंगे, वैराग्यो येन पुरुषो भगवन सर्वत्र भवेत् आचक्ष जीवलोकस्य विविधा मम संसृति ही। ये माता का कथन है, मेरा पुत्र तुम मुझे ऐसी बातें कहो जिसका श्रवण करने से मेरे चित्त में वैराग्य की अग्नि धधक उठेगी। हमारे चित्त में वैराग्य की ज्वाला है नहीं, भोगने की बहुत ही लालसा है। तो मां उस बात की प्रतीक्षा करते हुए कहती हैं, बेटा मुझे ऐसी बातें कहो वैराग्यम येन पुरुषः, जिस तरह से वैराग्य उत्पन्न हो जाए, क्या हम सब यहां विराजमान हैं? स्वाभाविक वैराग्य बहुत कम लोगों में है, हमारे में नहीं है, हम किसी से आशा करें? स्वाभाविक वैराग्य कदाचित किसी थोड़े बहुत लोग में होता है। भागवत में एक व्यक्ति में स्वाभाविक वैराग्य आया है, वो कौन है? श्री सुखदेव गोस्वामी। अब वो भी सामान्य व्यक्ति नहीं है, स्कंद पुराण में तो कहा गया वो साक्षात श्री कृष्ण है, ऐसा कहा गया स्कंद पुराण में। भागवत की महिमा आप लोग पढ़ के देखिएगा। तो जन्मते ही वैराग्य ऐसे कोई गिने चुने लोगों में होता है जिनकी बहुत सुकृति हो, पर हम जैसे लोगों को अब इतनी इस दुनिया में विपदाएं हैं, ये देख करके भी वैराग्य नहीं हो रहा है। कौन नहीं देखता, पदम पदम जद विपदाम, ये तो अनुभूति की बात है। गाड़ी चलते समय एक्सीडेंट का डर बना रहता है, शरीर स्वस्थ रहते समय रोग का भय बना रहता है, क्या नहीं, ये दुनिया भर का भय है। इतना देखने पर भी वैराग्य नहीं होता है, फिर खाली सुख सुख हो तो फिर वैराग्य होगा कहां से? तो देवहूति इसी बात की प्रतीक्षा करती हुई कहती है, वैराग्यम वैराग्य येन पुरुषः भगवान सर्वत्र भवेत। हे भगवान, हे मेरे पुत्र, आप मुझे उस बात का बखान करो मेरे समीप जिसका श्रवण करके मेरे चित्त में वैराग्य उत्पन्न हो जाए, और जीवों में क्या संस्कृति है, क्या दुख है, वो सब वर्णन करो। तो माता के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कपिल प्रारंभ करते हैं। तीन अध्याय में चक्रवर्ती जी लिखते हैं तामसी, राजसी और सात्विक गति। राजसी माने मानव जोनी में जो जो कष्ट हैं, तामसी जोनी में तो कष्ट है ये बंदर भेड़ ये सब आप देख ही रहे हैं, पर मानव जोनी में जो कष्ट हैं उसकी अनुभूति देखिएगा ये पाठ करके, कैसा कष्ट होता है, कैसी पीड़ा होती है। तो क्रम के अनुसार ये प्रसंग चल रहा है, जीवात्मा मां गर्भ में कैसे पीड़ित होती है और जन्म लेने के पश्चात क्या पीड़ा होती है, ये सब श्रवण करने के पश्चात थोड़ा थोड़ा वैराग्य उत्पन्न होता है। जब भी कहीं हम भजन सुन लेते हैं, कहीं वैराग्य का भजन, तो मन में थोड़ी भावना जगती है। अब देखिए जीव को क्या पीड़ा होती है, इस श्लोक में जो कहा गया है, दर्शाया गया है, साई तो असुचि पर्यंके, जन्म तो ले लिया, जन्म लेने के पश्चात जीव में कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। इसके पूर्व श्लोक में कहा गया है, परछंदम न विदुषा पुष्यमाणो जनेनसः। छंद शब्द का अर्थ होता है कामना, अभिलाषा, इच्छा। वेदांत भाषा में ये छंद माने अभिलाषा, कामना। तो बोले शिशु की जो कामना होती है मां उसे जान नहीं सकती, पिता उसे जान नहीं सकता। परछंदम अविदुषा पुष्यमाणो जनेन सह, और किस किन किन व्यक्तियों के द्वारा शिशु का पालन होता है, तो सुखदेव जी कहते हैं, व्यासदेव जी कह रहे हैं कि परछंदम अविदुषाम, जो चाहिए उसको नहीं जानने वालों के द्वारा उस शिशु का पालन होता है। मान लीजिए शिशु को दूध चाहिए तो माता कहेगी कि इसको कड़वा रस चाहिए, हाँ पेट में दर्द हो रहा है, उसको दवाई पिला देगी। और मान लीजिए दवा चाहिए तो उसको दूध पिला देगी। देखिए कैसी कैसी भयानक स्थिति है। परछंदम, यहां पर माने शिशु, परछंदम अविदुषाम पुष्यमाणु जनेन सह, सह शिशु उसकी ऐसी दुर्दशा है। अनभिप्रत्यम आपन्न, जो उसका अभिप्रेत नहीं है, जो उसकी अभिलाषा नहीं है, वो ही उसको मिलता है। इस श्लोक में उसकी आंतरिक स्थिति के प्रति लक्ष्य किया गया है। भाई तुमको चाहिए दूध पर तुमको मिलता है नीम का कड़वा रस, करोगे क्या, रोक भी नहीं सकते। कैसी कैसी अस्वतंत्रता हमें है। कोई व्यक्ति यदि इसको बार बार सुनेगा क्या उसके मन में थोड़ा बहुत वैराग्य पैदा नहीं होगा? अवश्य होगा। हाय हाय मेरे जीवन, ये केवल कोई परोक्ष बातें तो नहीं कही जा रही है, ये सब हम अपनी बातें हैं, आपकी बातें हैं, हमारी बातें हैं, ये माताओं की बातें हैं, सबकी बातें, सबका शैशव अवस्था बीत चुका है, सबके जीवन में बाल्य आया है, पौगंड आया है, जवानी आई है, अब तो खटखटा रही है क्या है, बुढ़ापा। जवानी के ऊपर हुकूमत चलती है बुढ़ापे की, ये शासन है। बुढ़ापा कहेगा कि मैं इसको लेकर के ही चलूंगा, ये स्थिति है। आंतरिक अवस्था में मुझे क्या चाहिए वो हम मांग नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते और प्रतिकार भी नहीं कर सकते, हमें ये नहीं चाहिए, हम ये कह नहीं सकते। कितनी अस्वतंत्रता है, कितनी परतंत्रता है, कितनी गुलामी है ये। इसी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी कहा करते थे अपने प्रिय शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी से, क्या तुम स्वतंत्रता के पीछे भागते हो, जीव स्वयं परतंत्र है, कितनी गुलामी है। इसलिए हमें लगता है कि उर्दू भाषा में इनको बंदा कहते हैं, ये बंधन को प्राप्त हुआ है कि नहीं। आंतरिक आभ्यंतर स्थिति ऐसी है, बाहर की क्या दशा है, साइनो साई तो असूचि पर्यंके, और उसको लिटाया गया है, वो लेट नहीं सकता। कभी कभी हमारे समाज में वो देखा जाता है, यदि शिशु करवट बदलता है तो उसके लिए त्योहार होता है, उत्सव होता है, भावा शिशु ने करवट बदल ली है, ऐसा भागवत में वर्णन आया है, करवट बदलने की लीला। श्री कृष्ण जब करवट बदलते हैं तो माता को बड़ी प्रसन्नता होती है, अर्थात शिशु इतना परतंत्र है, यदि थोड़ी से ऐसे हिला देता है तो मां को प्रसन्नता होती है। साई तो असूचि पर्यंके, पर्यंक शब्द का अर्थ केवल खट नहीं है, पलंक नहीं है। हम जब इस श्लोक का अध्ययन किए तो हमको लगा कि कपिल मुनि जब कह रहे हैं इस श्लोक को, इसमें तो गरीब भी आएगा धनवान भी आएगा, पर पर्यंक शब्द का अर्थ क्यों कहा गया, पर्यंक क्यों कहा गया, पर्यंक का बिल्कुल ओपन अर्थ होता है पलंक, है कि नहीं। पर सभी शिशु के किस्मत में पलंक नहीं आता है, आता है कहीं, कितनी माताएं होगी सबने कभी अपने शिशु को पलंक में नहीं सुलाया होगा। हमने देखा ऐसे झोपड़ी में रहने वाले जो श्रमिक है, और वो शिशुओं की माताएं बस एक वैसे बोरे बोरे का एक पलना बनाते हैं और उसको पेड़ की डाली में लटका देते हैं और शिशु उसी में ही रोता रहता है, कुआं कुआं कुआं, क्यों आया, क्या करूं। साई तो असूचि पर्यंके, तो पर्यंक शब्द का अर्थ मेरे प्रभु, पर्यंक माने इसका विस्तार अर्थ होता है सैया, अंग्रेजी में कहते हैं बेड, सैया चाहे किसी भी बिस्तर बना दो, उस बिस्तर को अच्छे शब्द में कहते हैं पर्यंक। साई तो असूचि पर्यंके, पर्यंक अथवा बिस्तर गंदा कैसे हुआ, बोले ऐसा हो गया क्योंकि शिशु उसमें मलमूत्र का त्याग करता है, लार खून पीप सब है, और गर्मी में तो पसीना भी आता होगा शिशु से, क्यों नहीं आएगा, और उसी में वो लेटा रहता है। यदि पूर्व पाठ को आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि विष्टाभू, जैसे मल से कोई कीड़ा उत्पन्न होता है, हमारा जन्म वैसे ही हुआ है, इसलिए हमारा नाम है विष्टाभू। विष्टाभू माने मल से उत्पन्न कीड़ा, बताइए कितना बड़ा डिजिग्नेशन है, ये है कितनी भारी बढ़िया उपाधि है ये हमारे लिए, क्या ऐसी उपाधि लेकर हम प्रसन्न होंगे, ये तो हम नहीं कह रहे हैं, ये भागवत में लिखा हुआ है विष्टाभू, मल से तुमने जन्म लिया है और ये उपाधि हमारे लिए। इसलिए परम दयाल असरण शरण दीन बंधु आर्त त्राण श्री कृष्ण कहते हैं मेरे लाल, जन्म तो हो गया फिर दोबारा लेने की कोशिश मत करना, जितना हुआ बस उतना ही उसको रहने दीजिए, आगे का प्रयास है। विष्टाभूर इव सूदर, एक मां के पेट से कीड़ा जैसे जन्म लेता है ऐसे ही तेरा जन्म हुआ है, ऐसे ही। साई तो असुचि पर्यंके, मल मूत्र का त्याग करता है उसी में कीड़े की तरह ऐसा होता है। कभी कभी हमने देखा बच्चों को, मैंने देखा वो मल खा जाते हैं, सबने खाया होगा, ऐसा नहीं कि किसने नहीं खाया होगा, हमने देखा, यदि इतिहास में मैंने देखा है तो ये बात प्राय सत्य है सबके लिए। वो बिच्छू पकड़ देता, पकड़ता है कि नहीं, कभी कभी कीड़ों को पकड़ करके खा जाता है, वो हिलता हुआ उसको लगता है ये कोई बढ़िया आहार है। सबके जीवन में आया है, हनुमान जी के जीवन में भी आया है, सूर्य को देख करके बोले हम खाएंगे, लाल लाल फल है। ये उदाहरण कोई नवीन नहीं है, ये पुरातन है। साई तो असुचि पर्यंके जंतु हो, स्वेदेज स्वेदज दूषिते, स्वेदज स्वेद माने पसीना, पसीने से कई प्रकार के प्राणी है, मुख्यतः तो चार प्रकार के प्राणी, स्वेदज अंडज उद्भिदज जरायुज। जरायु माने ये गर्भाशय को कहते हैं जरायु, तो उस जरायु से जो जन्म लेता है उसको कहते हैं जरायुजा। तो हमारा सबका जो जन्म है हम सब जरायुज कहलाएंगे, झिल्ली फाड़ करके हमारा जन्म हुआ है। जब तक हम झिल्ली को नहीं फाड़ेंगे हमारा जन्म नहीं होगा, और वो हमारे शक्ति से बाहर है, वो हमारी तमगुणी दशा है, हम कुछ नहीं कर सकते। धूमेना अब्रियते वन्नी यथा दर्शो मलेन च यथोल्वेना गर्भ तथा तेनेदम आवृतम। उल्व माने झिल्ली, गर्भ, गर्भाशय, संस्कृत में झिल्ली को, गर्भाशय को उल्व कहते हैं, परतंत्रता है। कितनी पीड़ा है मेरे प्रभु, कितनी पीड़ा है। ये तो बाहर की दशा की वर्णन, दशा का वर्णन हम कर रहे हैं, गर्भ की स्थिति का वर्णन तो आप लोगों ने पढ़ा होगा उस 10 श्लोक में, उस क्या स्थिति है, बड़ी विकट और भयंकर स्थिति है। बड़े बड़े लोगों ने इसका अनुभव किया है। सुखदेव ने तो कहा कि मैं यहां से जाना नहीं चाहता, क्यों नहीं जाना चाहता इसका, ये बात हम बाद में कहेंगे। वहां पर उनको पीड़ा नहीं थी, लेकिन सामान्य जीवात्माओं को बहुत कष्ट है। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने इस पर एक कमेंट दिया है संस्कृत में, बोला शक्यते केन वक्तुम, बोले गर्भ में जो पीड़ा है उसको कौन बखान कर सकता है, कौन कह सकता है। शक्यते केन वक्तुम, केन माने किसके द्वारा, कोई नहीं कह सकता। बोले क्या पीड़ा है, कैसी दुर्दशा है। तो आदि शंकराचार्य कहते हैं आदौ कर्म प्रसंगात कलेति कलुषम मात्र कक्षौ स्थितम माम बिण मुत्रा मध्य मध्य क्वचित नितराम जाठरो जात वेदा यद वै तत्र दुखम व्यथते नितराम शक्यते केन वक्तुम। कितने पीड़ादायक ये वाणी है। आदौ कर्म प्रसंगात कलेति कलुषम मात्र कक्षौ, बोले अपने कर्म के कारण तत्तेनुकंपाम सुसमिक्षमाण भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, आत्मकृतम विपाकम, अपने किए हुए कर्मों के कारण। आदौ, आदौ माने मेरे जन्म के पूर्व मैंने जो कर्म किया था। आदौ कर्म प्रसंगात कलेति कलुषम, बहुत घृणित क्रियाएं हैं, मैंने भोग किया है, वासना से मैंने धर्षित हुआ है, यह हमारी स्थिति है। वासना युक्त कर्मों के कारण हमको बार बार जन्म लेना पड़ता है। गीता जी कहती है अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च त्रिविधा कर्मण फलम भवती अत्यागिनाम प्रत्यह न तो संन्यासीनाम क्वचित, बोले जिन्होंने संन्यास ले लिया है उसको कर्मफल नहीं लगता। भवती अत्यागिनाम, जिन्होंने त्याग नहीं किया उनको कर्मफल का बंधन लगता है। भवति अत्यागिनाम प्रत्य, प्रत्य माने मरने के बाद, जब मर जाएंगे फिर कर्म फल को भोगने के लिए मां की कुक्ष में हमें आना पड़ेगा। न तू सन्यासी नाम क्वचित, पर सन्यासियों के लिए यह नियम लागू नहीं है। मेरे प्रभु जल्दी जल्दी सन्यास ले लेना चाहिए। ये गीता की महावाणी है, ये महावाक्य है। भवती अत्यागी नाम, जिन्होंने कर्म फल का जीते जी त्याग नहीं किया है, भवती उनके लिए यह होगा। प्रत्यय कब होगा? मरने के बाद। न तू माने लेकिन सन्यासी नाम तो क्वचित, सन्यासी लेने वालों के लिए नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो काम्य कर्म का त्याग ही कर दिया है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासः कवयो विदुः, कैसे होगा? पर शंकराचार्य भगवान हमारे लिए कह रहे हैं, आदि शंकराचार्य, कलति कलुषम मात्र कुक्षौ, मां के उदर में हमको आना पड़ा। कैसे? बिड़िमुत्रा अमेध्य मध्ये, बिट मल मूत्र, अमेध्य माने खून और पीव, अमेध्य मध्य कैसे हैं? नीचे सिर ऊपर पैर, और चारों ओर मलमूत्र का प्रभाव, और तीस पर क्या है? क्वचित नितरम जाठरो जातवेदा, जातवेदा माने अग्नि। बोले पेट में जो माता की पेट, माता के पेट में अग्नि होती है, उससे वो शिशु पीड़ित होता है। क्वचित नितरम जाठरो जातवेदा यद यद वै तत्र दुखम, बोले जितना जितना दुख होता है, शक्यते के न वक्तुम, कौन कह सकता है? हे परमेश्वर, हे महेश्वर, यद योन्याम प्रमुच्य हम, जिस दिन हम इसी योनि से मुक्त हो जाएंगे, तब प्रपद्ये महेश्वरम, तब हम भगवान श्रीहरि के शरण में जाएंगे। महेश्वर माने श्रीहरि। यद योन्याम प्रमुच्य हम तत् प्रपद्ये महेश्वरम। इससे तो एक बात ध्वनित हो रही है कि यदि हम हरि का भजन नहीं कर सकते हैं तो हमारे पीछे और एक उपाधि लग जाएगी कि हम सब मिथ्यावादी कहलाएंगे। यद योन्याम प्रमुच्य हम, जिस दिन हम इस योनि से मुक्त हो जाएंगे, तत् प्रपद्ये महेश्वरम, मैं महेश्वर की शरण में आ जाऊंगा। लेकिन यहां आकर के सब भुला दिया। साई तो अशुचि पर्यंके, जन्म के माता के गर्भ में ये दुख है, उसके बाद तो कितने दुख है। पांच श्लोक बीत गया स्तुति के बाद, ये चार पांच श्लोक, ये तो छठा छब्बीसवां श्लोक ये है। कैसे जन्म लेता है? श्रुति बात, श्रुति मारुत, उसको वो हवा, गर्भ की हवा उसको धकेल देती है, जाओ यहां से, तुम ज्यादा दिन नहीं रह सकते। कितनी परतंत्रता। अच्छा, जन्म लिया, कीड़े काटने लगे, नेसह, इस माने प्रभुता, स्वतंत्रता, पर नेस शब्द का अर्थ होता है उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है, न ईसह नेसह, बिल्कुल परतंत्र है। किस लिए परतंत्र है? बोले कंडू याने खुजला भी नहीं सकता, मेरे प्रभु थापड़ क्या मारेगा, खुजला भी नहीं सकता, ऐसा नहीं कर सकता, बस ऐसा नहीं कर सकता। कंडू ये न अंगानाम, एक एक अंगों का, कहीं पीठ में खटमल ने काट दिया तो हम हाथ, मच्छर काट दिया तो मार देते हैं, मक्खी को भगा देते हैं, पर शिशु कुछ भी नहीं कर सकता। कुआ कुआ ऐसे कहेगा, मां को पुकारेगा, वो कहां है मां, तू जल्दी आ जल्दी आ। मां समझ जाती है, दौड़ करके आ जाती है। खुजला नहीं सकता वो, करवट भी नहीं ले सकता। आसन उत्थान चेष्टने, बैठ भी नहीं सकता। यहां पर प्रभुपाद जी के तात्पर्य अनुवाद में लिखा हुआ है, खड़े होने या चलने की बात तो दूर रही, खुजला नहीं सकता, क्या कर सकता है वो? ऐसी ऐसी पीड़ा है, ऐसी ऐसी पीड़ा है, हम देख रहे हैं सबका मुंह विमर्श हो गया है। कितना बड़ा वैराग्य है, अच्छी बात है। यदि थोड़ी देर सुनकर के आपको हताशा लग रहा है, ऐसा हताशा ही जीवन में आगे बढ़ा देगा। वैराग्य, वैराग्य येन पुरुषः सर्वतो भवेत। भगवान मुझे ऐसी बातें कहो कि जिससे मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए। तो माता भगवान कपिल ने कहा ठीक है अब बताते हैं, आप सुनती रहना। ये बात केवल कपिल नहीं बता रहे हैं, दोनों ने बतलाया, एक देवहूति नंदन भगवान कपिल और एक सचिनंदन भगवान चैतन्य महाप्रभु, दोनों का कथन बिल्कुल बराबर समान है। एक ने संस्कृत में देवनागरी भाषा में और एक ने बंगला भाषा में बताया, भाव एक ही है, पर थोड़ा सा अंतर है समय का। माता ने वैराग्य ले लिया है, यहां पर माता ने वैराग्य ले लिया है, पिता नहीं थे, करदम जी चले गए थे, वहां पर भी जगन्नाथ मिश्र नहीं थे, वो भी जा चुके थे। अच्छा, इनकी जितनी बहनी थी, जितनी बहन, उनकी सबकी शादी हो गई थी, और विश्वंभर की जितनी बहन थी वो सब चली गई थी, भाई भी था नहीं, वो भी चला गया था। लेकिन अंतर इतना था, देवहूति पुत्र कर्दम कपिल जी का विवाह नहीं हुआ था, पर हमारे प्रभु का विवाह हुआ था, लक्ष्मी प्रिया साथ में थी, विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया मां के पास बैठी थी। बात एक ही है, गया से दीक्षा लेने के उपरांत जब आते हैं महाप्रभु, स्नान आदि करके माता ने भोजन थाली लेकर के बैठी और पूछा, निमाय आज किससे झगड़ा किया ये बताओ, या तो क्या पढ़ाया बताओ, या तो तुम पढ़ाते हो या तो तुम झगड़ते हो, क्योंकि बड़े तार्किक थे, कोई भी अटपटी बात उनके सहन में नहीं आती थी। पर निमाय का मन तो इस जगत में और था नहीं, वो तो धातु का अर्थ ही कृष्ण कर रहे थे, वास्तव में धातु माने कृष्ण, धातु प्रसादात, धातु माने कृष्ण, जो वेदांत पढ़ते हैं उनको पता है, धातु धा माने धारण करना, जिसने धारण कर रखा है वो कृष्ण है, धातु प्रसादात। तो तब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस कपिल की बातें कही, माता अच्छी बात तो यही है कि जीवन में जीवन रहते रहते व्यक्ति को भजन कर लेना चाहिए, गर्भ में कितना कष्ट है, कितनी पीड़ा है, जन्म लेने के पश्चात कितनी पीड़ा होती है, मां भाग्यशाली वही जीव है जो जन्म लेने के पश्चात वो भजन कर लेता है, इसलिए माता मैं भजन करूंगा। सच्ची माता को समझ में नहीं आई ये बात, क्या हो गया इसका, हुआ तो क्या हुआ इसका, लेकिन बात बिल्कुल वैराग्य की, जो कपिल मुनि ने कहा है चैतन्य महाप्रभु ने एग्जैक्टली वही बातें कह दी। चैतन्य भागवत के मध्य लीला के प्रथम अध्याय में 201 नंबर प्यार से आप लोग देख सकते हैं यही बात, वैराग्य की बातें हैं। माता ये संसार बहुत क्षणिक है, बहुत माइक है, और बचपन से ही पीड़ा है। इस प्रसंग का तात्पर्य, इस प्रसंग को कभी समझा रहे थे हमारे महाराज जी, एक बार हमने सुना था, महाराज जी ने एक बढ़िया दृष्टांत दिया इस प्रसंग में। उन्होंने कहा जिसका स्वागत किया जाता है, यदि स्वागत की परिपाटी ठीक नहीं है तो भोजन ठीक होगा इसमें कोई गारंटी नहीं है। बोले मान लीजिए हमने किसका स्वागत किया है, आओ महाराज हमारे घर पे आओ, लेकिन स्वागत से पहले मैंने कहा 2 घंटे धूप में खड़े रहना, बाद में आना, ये कोई तरीका है? अथवा हम कहेंगे कि 2-4 घंटे कीचड़ में, ठंड में, इस ठंड में यमुना के जल में 2-4 घंटे खड़े रहना फिर आना। तो वो व्यक्ति यदि बुद्धिमान होगा वो सोचेगा, अरे भाई ये कैसा निमंत्रण है, कैसा आमंत्रण है, हमको आमंत्रित तो कर ही रहा है पर दो घंटा कीचड़ में और ठंड में खड़े होने के लिए कह रहा है। अच्छा होगा कि यह निमंत्रण स्वीकार नहीं किया जाए, क्यों यह निमंत्रण हम स्वीकार करेंगे? तो महाराज जी ने इस प्रसंग को इसमें जोड़ करके कहा, यदि ये संसार हमारा स्वागत करता है तो जन्म में मां को पीड़ा देकर के स्वयं पीड़ित होकर के क्यों हम आते हैं, हंसते हंसते क्यों नहीं आते हैं? सब संत ने देखा, धन्य है हमारी भारत भूमि, यहां पर संतों ने वेश्याओं से शिक्षा ली है, यहां पर संतों ने मांसभक्षी कुरर पक्षी से शिक्षा ली है, यहां पर संतों ने चलती चक्की को देख करके उससे भी शिक्षा ली है। ये भारत की, ये भूमि की मर्यादा है, ये महिमा है। इस प्रसंग में महाराज जी कहते हैं, यदि उस जीवात्मा में थोड़ा सा भी बोध है, यदि ये संसार उसका स्वागत करता है, लेकिन स्वागत की परिपाटी क्या है तो देखो, 10 महीने तक अथवा 7 महीने तक उसको उल्टा टांग करके रख दिया जाता है, सिर नीचे और ऊपर पैर, चारों ओर मलमूत्र का गड्ढा है वो, और जैसे मैंने कहा अग्नि का ताप है, इधर ताप है, मलमूत्र है, उल्टा नीचे सिर ऊपर पैर, ये कोई परिपाटी है आने का? ये कोई स्वागत करने का तरीका है? ये इसलिए प्रकृति हमें स्वागत नहीं कर रही है मेरे बंधु, ये हमारी पीड़ा को सूचित कर रही है, तुमने कृष्ण भजन नहीं किया है इसलिए दंड तुमको भोगना पड़ता है। ये परिपाटी नहीं है, इसको संतों ने देखा है। जब तुम पैदा हुए जगहां से तुम रोए, रोते रोते तुम्हारा जन्म हुआ है, हमारा जन्म हुआ है। प्रभुपाद जी ने कहा, ध्यान देने की बात है कि शिशु रोता हुआ तथा पीड़ा का अनुभव करता हुआ उत्पन्न होता है और जन्म के बाद भी वही कष्ट चालू रहता है। इसी को महाराज जी ने कहा था, बोले स्वागत तुम्हारा हमारा हुआ है एक विकृत परिपाटी को लेकर के, इसलिए इसी जन्म में सुख नहीं है, केवल दुख ही दुख है, और जन्मते ही दुख है, जीते भी दुख है, मरते भी दुख है। और जिस जवानी को हम सुख कहते हैं, चाणक्य पंडित ने कहा, कष्टम च खलु यौवनम, जवानी में भारी पीड़ा होती है, हर प्रकार की पीड़ा है, धन कमाना भी पीड़ा है, शादी करना भी पीड़ा नहीं है, हंसी की बात है, पीड़ादायक है। कष्टम च खलु मूर्खत्वम, कष्टम च खलु यौवनम, कष्टात कष्टतरम चैव परगेह निवासनम, परगेह माने दूसरे के घर में रहना, ये बहुत ज्यादा कष्ट है, मूर्खता भी कष्ट है। हम सबको भगवान श्री कृष्ण से ये दुआ करना चाहिए कि प्रभु हमको धन से रिक्त कर दो, निर्धन बना दो, पर मूर्ख मत बनाओ। कष्टम च खलु मूर्खत्वम, कष्टम च खलु यौवनम, कष्टात कष्टतरम चैव परगेह निवासनम, परगेह माने दूसरे के घर में निवास करना, ये बहुत ज्यादा कष्ट है। परगेह क्या है? ये शरीर ही परगेह है, ये देह हमारा नहीं है। तो क्यों करे अभिमान रे प्राणी, थोड़ी है तेरी शान, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों ये मिट्टी ने खाए, रहा ना नामो निशान, तो क्यों करे अभिमान। शिवाजी का, बड़े बड़े लोग हैं, कितने बड़े बड़े बादशाह, अकबर का नाम मिट गया, कितने राजा, कथा इमामस्ते कथिता महियसाम, बिताय लोकेशु यशा परियुषाम, बड़े बड़े जसधारी नामधारी लोगों का नाम निशान मिट चुका है, हमारा क्या है, हम किस खेत की मूली है। इसलिए इन चीजों को स्मरण करता हुआ, ये भागवती शब्द है, ये मनन करने योग्य है, असमर्थ हो रहा है, कहीं कोई नहीं है, कहीं किनारा नहीं है, दुख का कहीं किनारा नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा ये दुखों का सागर है, सागर का किनारा कहीं है? इसलिए भव को सागर कहा गया, कोई किनारा नहीं है, कोई किनारा नहीं, केवल सहारा है प्रभु का नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना ही सहारा है। इस सहारे, इस नैया के जरिए हमें भव सागर को पार कर जाएंगे। यही दुख है, इतना दुख है। इसी के लिए हम स्थान का चयन करते हैं, इसी के लिए हम पात्रता का चयन करते हैं, इसीलिए हम मंत्र संस्कार आदि का चयन करते हैं। कैसे हम भजन कर लें, कैसे नाम में हमारी निष्ठा हो जाए, एक बात ध्यान देने की योग्य बात है। ये प्रसंग जो चल रहा है, थोड़ा पूर्व प्रसंग हम कह दें। वैसे हम तो सुनते आ रहे हैं, काफी 10 लोगों की व्याख्या हो गई, पर ध्यान देने योग्य बात है, सभी जीव भगवान, सभी जीव माता के गर्भ में स्तुति नहीं करते हैं। ये हम ध्यान दे रहे हैं, कई लोगों ने इस पर प्रवचन किया भी है इसी जगह पर इस बात पर चर्चा नहीं हुई है। इस प्रश्न को मैंने लगता है कि 12 वर्ष पूर्व हमारे महाराज से पूछा था इसी जगह पे, तब ये हॉल ऐसा नहीं था, ऐसा खुल्लम था, अजवेस्टस ऊपर यहीं पे महाराज जी बैठकर कथा कर रहे थे, ये कपिल प्रसंग था। तब इस प्रसंग के दौरान हम खड़े होकर के महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज यदि जीव गर्भ में स्तुति करता है तो गर्भ से आने के पश्चात स्तुति नहीं करता, ये कैसी बात है? तब महाराज जी ने एक मजाक से उत्तर दे दिया, वैसे हमें तो अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा भगवान से पूछ लो, जैसे आप लोग हंस रहे हो उस समय भी पब्लिक हंस पड़ी, हमें अच्छा नहीं लगा। अरे हमारा प्रश्न तो अच्छा था, मैंने अपने अंदर जाकर विश्लेषण किया, मैंने तो जो प्रश्न किया उसमें कोई ऐसी मजाक वाली बात थी नहीं, और स्वाभाविक मेरे मन में प्रश्न आया कि जीव यदि मां के गर्भ में स्तुति कर सकता है तो गर्भ से जब आ जाता है तो क्या बिगड़ जाता है उसका। पर ऐसा मेरा अपमान हो गया, ठीक है महाराज जी ने अधिकार समझ करके, शायद अनधिकार समझ करके उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसके बाद मैंने फिर पूछने का साहस नहीं किया, पर मन में हमारी खोज जारी रही। 10 वर्ष के बाद हमें इसका उत्तर मिला। एक बार हम राधा कुंड गए थे, भक्ति विनोद ठाकुर जी की किताब मिली, उसके बाद हमने चक्रवर्ती पाद की टीका पढ़ी। आप लोगों के पास जिसके पास है टीका आप पढ़ लेना, और ठीक ये जो 10 स्तुतियों में जो जीव 10 श्लोकों में स्तुति करता है उसके पहले आप देखेंगे नाथ मान ऋषिर भीतर, नाथ मान माने नाथ, नाथ शब्द का अर्थ होता है याचना करना, बोले ऋषि वो जो जीवात्मा है वो ऋषि बन चुका है और वो भयभीत हो रहा है। नाथ मान ऋषिर भीतर 7 धातुओं से बंधा वो जीव स्तुति कर रहा है, नाथ मान स्तुतिर भीतः, बड़ी भयानक स्थिति है, जीव क्या कर सकता है। तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो ऋषि है, ऋषि शब्द का, और ठीक ये 26 से लेकर आप जब पीछे आओगे ये 22 नंबर श्लोक में आप देखिएगा, एवं कृतमति गर्भे दशमास्य स्तवन ऋषि ही, यहां पर भी ऋषि शब्द का प्रयोग हुआ है। आप विचार कीजिए, चक्रवर्ती ने, जीव गोस्वामी ने इस पर बढ़िया टीका लिखी है। सामान्य जीव ऋषि नहीं हो सकता, सामान्य जीव प्रार्थना नहीं कर सकता गर्भ में, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इस पर अपनी सहमति दी है। उन्होंने कहा मेरे मित्रों जो जीव मां के गर्भ में स्तुति करता है फिर वो जन्म लेने के बाद भी स्तुति करेगा, वो फिर सामान्य बंधन को प्राप्त नहीं होगा। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य भागवत में भी कहते हैं, उन्होंने कहा है मां कृष्ण दास का जन्म और मरण नहीं होता है। ये जो सुति मारुत है, ये गर्भ की जो हवा है, ये कृष्ण भक्तों को धकेलती नहीं है, वो अपनी इच्छा से जन्म लेता है। जैसे श्री कृष्ण ने कहा अजोपी सन्न व्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपी सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म माया, यही नियम भक्त के लिए भी लागू है। इसीलिए ऋषि शब्द का प्रयोग हुआ है, यदि एक वचन का प्रयोग होता तो ऋषिम कहा जाता कि एक व्यक्ति ने स्तुति करी। लेकिन आप लोग विचार करके देखोगे वहां पर जंतु उवाच लिखा हुआ है, जो जंतु उवाच नहीं लिखा हुआ जब स्तुति का प्रारंभ हुआ है वहां पर जंतु उवाच, उवाच शब्द माने कहा, वहां पर वर्तमान काल का प्रयोग नहीं हुआ है, जंतु कहता है ऐसा नहीं लिखा हुआ। भागवत में कई एक स्थानों पर वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है, भविष्यत काल का प्रयोग हुआ है। यदि सभी जीव कहते हैं तो जंतु उवाच क्यों लिखा हुआ, उचित लिखा जा सकता था। अब मेरी बात समझ रहे हैं, उवाच जैसे सुक उवाच है ना लिखा हुआ है, सुक उवाच नारद उवाच युधिष्ठिर उवाच, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि नारद जी ने कहा, सुखदेव जी ने कहा, वो सुखदेव जी कहते हैं ऐसा कोई नहीं कहता, अभी थोड़ी ना कह रहे हैं सुखदेव जी, सुखदेव ने कहा था। ऐसे ही उस कोई कोई गिने चुने व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, सभी जीव नहीं करते। इसीलिए 22वें श्लोक में ऋषि शब्द की जहां पर व्याख्या हुई है वहां नीचे का अर्थ अलग है, ऊपर का अर्थ अलग है। जो ऋषि होता है वो प्रार्थना करता है, मां के गर्भ के बाद भी उसका ज्ञान उसकी स्मृति बनी रहती है। जैसे सुखदेव गोस्वामी, जैसे नारद जी भी, कोई भी मुक्त पुरुष जन्म लेता है तो उसका ज्ञान सर्वत्र समान रहता है, वो अखंड ज्ञान को प्राप्त हुआ रहता है, अच्युत ज्ञान को प्राप्त हुआ रहता है। इसीलिए हमको ध्यान देना चाहिए इसका अर्थ क्या है, सामान्य प्रयोग नहीं करना चाहिए। और बड़े बड़े लोगों ने इसको दृष्टांत युक्ति के साथ खंडन भी किया है। बृहत नारदीय पुराण में एक श्लोक है, नारद जी कहते हैं अकामात अपि जो विष्णु हो सकृत पूजाम प्रकृपते, बोले जो कोई व्यक्ति एक बार विष्णु की पूजा कर लेता है न तेसाम भवबंधोपि कदाचित अपि जायते, बोले यदि एक बार कोई विष्णु की पूजा कर लेता है अकामात कामना से रहित होकर के, उसका भवबंध नहीं होता। तो यहां पर तो जीव ने शरण ली है फिर उसका भवबंध क्यों हो गया, इसलिए ये तर्क से ये बात खंडित हो गई कि सभी जीवी प्रार्थना नहीं करते। अकामात अपि यो विष्णु हो सकृत पूजाम प्रकृवते न तस्यम न तेसाम भवबंधोपि कदाचित अपि जायते, ये बृहत नारदीय पुराण का मंत्र है, ये श्लोक है। वाल्मीकि रामायण भी ले लीजिएगा, सकृदेव प्रपन्न यस्तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम। श्री राम ने कहा यदि एक बार कोई जीव मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसको सारे जीवों से अभय पद देता हूं, सकृत माने एक बार। और जीव तो यहां कह के आया, शपथ खा करके आया, यद योन्यम प्रमुचे हम तत् प्रपद्ये महेश्वरम, फिर क्यों माया में आया। इसलिए मेरे मित्रों इसका अर्थ आचार्यों ने किया है, भक्ति विनोद ठाकुर ने किया है, और जीव गोस्वामी पाद भी समर्थन देते हैं, और चक्रवर्ती पाद ने तो स्ट्रांगली बहुत जोर के साथ समर्थन दिया है, जो जीव मां के गर्भ में स्तुति करता है वो बाद में कृष्ण का भक्त बनता है, और जो जीव मां के गर्भ में बेहोश रहता है वो संसार से अब संसार में आने पर भी बेहोशी अवस्था में रहता है। इसलिए बड़ा भाग्य हमारा है, हम लोगों का ये हम लोगों को स्थान मिला है, वृंदावन जैसा स्थान है, नित्य सत्संग है, नजत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, ऐसा कहा गया है। भक्त निसंकुच कहता है यदि वैकुंठ भी हो पर वहां भगवान का गुण कीर्तन ना हो, न साधवो तदाश्रया, और श्रीहरि के शरण लेने योग्य शरणागत भक्त ना हो, नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सव, और जहां पर यज्ञेश भगवान का मख माने उत्सव आदि ना हो, सुरेंद्र लोकोपी नवेश सेव्यताम, यदि वो इंद्र लोक हो तब भी मैं उसका सेवन नहीं करूंगा। लेकिन हम लोग कितने भाग्यशाली है, ये अभिमान होना चाहिए। देखो वो अभिमान नहीं होना चाहिए, सांसारिक माइक अभिमान वो बेकार है, उस अभिमान से व्यक्ति मोहित होकर नरक में जाता है। लेकिन ये अभिमान तो होना चाहिए, कथा श्रवण का अभिमान, कृष्ण दासत्व का अभिमान, ये तो चाहिए। भक्तों ने इसकी पुष्टि की है, अस अभिमान जाय जनि भोरे, भक्तों ने कहा है, हे प्रभु मुझ में ऐसा अभिमान भर दो। कैसा अभिमान है, मैं सेवक यदु पति पति मोरे, हे यदुनाथ हे यदुपति आप मुझे ऐसा अभिमान भर दो, आप स्वामी हो मैं सेवक हूं, ये अभिमान जन्म जन्मांतर तक बना रहे। इसी को चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, जीवेर स्वरूप कृष्ण दास अभिमान, नहीं वो प्यार हम नहीं कह रहे, जीवेर स्वरूप कृष्ण दास अभिमान, ये अभिमान उसको होना चाहिए। हम वृंदावन के हैं, ये अभिमान होना चाहिए। कभी कभी सांस 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 समझते हैं, सांस भाई जो सांस चलने ना दे वो है सांस, बहुओं की सांस को जो रुकवा दे वो सांस है। वो एक दिन पराए घर की थी और घर पे आ गई तो उसका अभिमान हो गया, ये घर की मालकिन मैं है, उसका कोरा अभिमान। लेकिन वृंदावन में हम सब का असली अभिमान यही होना चाहिए, अस अभिमान जाय जनी भोरे, सभी गाइए, अस अभिमान, हास अभिमान जाय जनी भोरे, मैं सेवक यदु पति पति मोरे, आहा, इसका खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। मैं सेवक यदुपति पति मोरे, पति माने स्वामी, पाति ति पति वही मेरे रक्षक, वही मेरे पालक, वही मेरे सब कुछ है। ये अभिमान मेरे चित्त में होना चाहिए, अस अभिमान जाय जनि भोरे, ये अभिमान का पोषण होना चाहिए। यही भागवत का संदेश है। ये संसार में दुखद स्थिति है, चारों ओर दुख है, दुख का तांडव है, पर एक बार रघुनाथ यदुनाथ की जो शरण में आ जाता है फिर उसके दुख का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। यही भागवत का संदेश है। मां कहती है, वैराग्य जेन सर्वतः भगवन पुरुषो भवेत, हे भगवन वैराग्य जेन पुरुषो भगवन सर्वतो भवेत, आप मुझे ऐसी बातें कहो जिसका श्रवण करके जीव का वैराग्य हो जाए, संसार से वैराग्य हो जाए। हम कहां रहते हैं ये बड़ी बात नहीं है, पर जहां रहते हैं वहां यदि भजन हो जाए, ये अभिमान का पोषण हो जाए, वो स्थिति अच्छी है। वृंदावन धाम में आप सभी एकत्रित हैं, पुनः आपको हम साधुवाद धन्यवाद देते हैं, और इस साधुवाद के साथ हम आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री प्रभुपाद, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, भजन करता है, हाँ, हाँ जी हाँ जी, वो वही बात के लिए, उसी के लिए शास्त्रकारों ने कहा है सभी के लिए नहीं है। नहीं, चेतना तो आ जाती है, पर जो कृष्ण चेतना है, भगवत चेतना है, ये सबकी नहीं आती है। नहीं जी, चेतना जैसे हो जाती है, जैसे सर्दी गर्म का अनुभव हो जाना, ये हो जाता है, लेकिन सभी जीव स्तुति नहीं कर पाते। नहीं नहीं, कोई 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 ऐसा जीव है 10 साल से भजन करते हैं, कोई कोई 5-6 साल से भजन करते हैं, वो सब अपने सुकृति पर डिपेंड करता है। बिल्कुल क्लियर कट है, सुकृति पर डिपेंड करता है। हाँ, कभी कभी बचपन से भी भक्त बनता है। यहां आप देखिएगा, हमारे कई भक्त हैं जो वो सुकृति जब जग जाती है तभी हो जाता है। उनके पूर्व भक्ति सुकृति जब जगती है फिर ही हो पाता है। हो जाएगा सब 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 समय से, बाद में अभी भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हरे कृष्ण।